काफी मुश्किलों के बाद ही सही, लेकिन अभिमन्यु और ऐशिका ने अभिमान और आशिका की शादी करवा दी थी। पिछले 2-3 दिनों से अभिमन्यु की जिंदगी में काफी उथल पुथल मची हुई थी, पहले नक्श से निपटना और उसके बाद अभिमान और आशिका की शादी। इन सब के चक्कर में अभिमन्यु को प्रणाली से मिलने का मौका नहीं मिला। प्रणाली मुंबई के ही अस्पताल में थी। अभिमन्यु अभिमान की शादी के चलते मुंबई ही आया हुआ था। उसने ऐशिका को होटल रूम में सिक्योरिटी के साथ छोड़ा और फिर खुद प्रणाली से मिलने निकल गया था। ऐशिका का दिन आज के लिए काफी थकान भरा था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि प्रेगनेंसी में वो और ज्यादा दौड़ भाग करे। रात के 10 बजे के करीब प्रणाली अपने कमरे में परेशानी से चहलकदमी कर रही थी। नक्श ने उसे खुद से कॉन्टैक्ट करने के लिए मोबाइल दिया था। प्रणाली पूरे दिन से नक्श को कॉल कर रही थी, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। उसे नक्श पर गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही उसकी फिक्र भी हो रही थी। प्रणाली बेड को पकड़कर बैठी थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, कहीं मैंने उस नक्श राजवंश पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं करती? अगर उसने मुझे डबल क्रॉस किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कल जब वो मिलने आया था तब उसने यही कहा था कि वो ऐशिका को अपने साथ ले जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऐशिका को लेकर निकल गया हो और मेरे डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी उसने पूरी ही ना की हो? धोखे के बारे में सोचकर ही प्रणाली का खून खौल उठा। वो पिछले 2.5 सालों से अस्पताल में थी और अब वहां रहते हुए वो बुरी तरह थक चुकी थी। अगर प्रणाली अपने पैरों पर चल सकती तो अब तक वो कब का वहां से भाग चुकी होती। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे कुछ भी करके अभिमन्यु से कॉन्टैक्ट करना होगा। अगर मैं अभिमन्यु को नक्श की सच्चाई बताऊं तो शायद उसे यकीन हो जाए कि मैं ठीक हो गई हूं और उसका बुरा नहीं चाहती हूं। अगर नक्श मुझे धोखा दे सकता है तो मैं उससे उसका बदला लेकर रहूंगी। प्रणाली खुद से बातें करते हुए बड़बड़ा रही थी। इस वक्त प्रणाली को कोई देखता तो यही लगता कि सच में उसकी मानसिक हालत पहले से भी बदतर हो चुकी है। वो बैठे हुए हल्का हल्का काँप रही थी। इस बीच उसके कमरे का दरवाजा खुला। प्रणाली ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा तो उसके सामने अभिमन्यु राजवंश खड़ा हुआ था। अभिमन्यु को अपने सामने देखकर प्रणाली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और वो जल्दी जल्दी अपने बालों को सही करने लगी, मानो अभिमन्यु के सामने उसे बिल्कुल परफेक्ट दिखना हो। बहुत लंबे वक्त के बाद अभिमन्यु पर्सनली उसे मिलने आया था, वरना जब उसे प्रणाली का सच पता चला था तो उसने प्रणाली से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अचानक अभिमन्यु को अपने सामने देखकर प्रणाली को यही लगा कि नक्श ने अपना वादा निभाया है। तो इसका मतलब नक्श ने मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि खुद अभिमन्यु मुझे डिस्चार्ज करवाने के लिए आएगा। जो भी हो, आज अभिमन्यु वापस मेरे पास आया है और मेरे लिए इससे बड़ा दिन कोई और हो ही नहीं सकता, प्रणाली मन ही मन बोली। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थीं। अभिमन्यु प्रणाली के पास आया और उसे सर्द निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखें देखकर प्रणाली को डर लगा तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली थीं। जिस तरह से अभिमन्यु प्रणाली को घूर रहा था, उससे एक पल के लिए प्रणाली को यही ख्याल आया कि शायद नक्श और वो दोनों पकड़े जा चुके हैं, वरना अभिमन्यु उसे इस तरह सख्ती से कभी नहीं देखता। प्रणाली मन ही मन खुद को आने वाले लम्हे के लिए तैयार कर रही थी। तभी अभिमन्यु ने हल्के नरम लहजे में कहा, कैसी हैं आप मिस कपूर? प्रणाली ने जल्दी से अपनी नजरें ऊपर की, वो बिल्कुल पहले की तरह बात कर रहा था। प्रणाली ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, कैसी हो सकती हूँ, मैं रिकवर हो गई हूँ, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं मिटते अभिमन्यु, मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मेरा कोई अपना होता तो मुझे यहाँ से ले जाता, मैं खुद भी यहाँ से चली जाती अगर अपने पैरों से चल सकती। बोलते हुए प्रणाली की आवाज़ भारी होने लगी थी और आंखों में आंसू छलक पड़े थे। वो फिर से वही कर रही थी, अपनी खराब तबीयत और कमजोरी हालत का फायदा उठाकर अभिमन्यु को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मुझे ब्लैकमेल करने के लिए और जबरदस्ती मुझसे शादी करने के लिए फोर्स करना चाहती थी तुम, इसीलिए तुमने सुसाइड करने की कोशिश की, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि जहां से तुमने जंप किया है वहां से तुम्हारी जान कभी नहीं जाने वाली। तुमने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मैं हमेशा गिल्ट में रहूं और तुम्हें चाहकर भी ना छोड़ सकूं। प्रणाली की नजरें नीची हो गई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, उस वक्त मेरी मेंटल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, तुम अच्छे से जानते हो। बस तभी नादानी में आकर मैंने ये सब कर दिया था, लेकिन तुमने भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था, एक बार आकर पूछा तक नहीं। मैं अब ठीक हो गई हूँ अभिमन्यु, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो, प्रणाली ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। नहीं, तुम अभी भी ठीक नहीं हुई हो, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा, जिस पर प्रणाली ने जल्दी से उसकी तरफ देखा। अभिमन्यु की आंखों में वही नफरत और गुस्सा झलक रहा था। इस बार तो उसे प्रणाली की हालत देखकर भी दया नहीं आ रही थी। प्रणाली कुछ बोल पाती उससे पहले अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए कहा, तुम ठीक नहीं हुई हो एंड आई विल मेक श्योर कि तुम कभी ठीक ना हो। सही कहा तुमने, मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया था, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, हर वक्त तुम पर नजर रखनी चाहिए थी ताकि तुम मेरे खिलाफ कोई और नई साजिश ना कर सको। अभिमन्यु जैसे जैसे बोल रहा था, प्रणाली का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उसकी बातें साफ जाहिर कर रही थीं कि नक्श का पर्दाफाश हो चुका है। ये सब नक्श का प्लान था, प्रणाली हड़बड़ा कर बोली। लेकिन मैंने नक्श का तो नाम ही नहीं लिया। चलो अच्छा है, तुमने अपने मुंह से खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। पता है, पहले मुझे तुम पर दया आती थी क्योंकि तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ था। मैंने अपनी तरफ से तुम्हारा ध्यान रखने की पूरी कोशिश की, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखा, लेकिन फिर भी इस बात का खास ध्यान रखा कि तुम्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में रहने को मिले, तुम्हारा इलाज करवाया जाए। लेकिन तुम इन सब के लायक नहीं हो, तो फिर तुम्हें क्यों ना उसी जगह पर छोड़ दिया जाए जिसके तुम लायक हो, अभिमन्यु ने बिना किसी भाव के कहा। उसका ऑरा, उसका गुस्सा और चेहरे के भाव इतने खतरनाक लग रहे थे कि अभिमन्यु के बिना कुछ कहे ही प्रणाली को डर लगने लगा था कि ना जाने वो उसके साथ क्या करने वाला है। अंदर आइए, अभिमन्यु ने तेज आवाज में कहा। इसी के साथ एक औरत अंदर चलकर आई। प्रणाली ने उसे देखा तो वो जोर से चिल्ला पड़ी थी। उसने अभिमन्यु से कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने बचपन में वादा किया था तुम मुझसे शादी करोगे, फिर तुम वापस मुझे इस नर्क में कैसे भेज सकते हो। सामने प्रणाली की माँ खड़ी हुई थी। प्रणाली की माँ कैसी थी ये वो खुद अच्छे से जानती थी। अब तक वो प्रणाली से दूर थी तो उसका एक कारण अभिमन्यु था, वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन प्रणाली की हरकतों के बाद अभिमन्यु ने पूरी तरह से प्रणाली की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का फैसला किया। ऐसे में किसी न किसी को उसकी जिम्मेदारी उठानी ही थी, तो अभिमन्यु ने मिसेस कपूर को वहां बुला लिया था। प्रणाली अभी भी आंखों में डर लिए अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु ने नामे सिर हिलाया और कहा, मैंने तुमसे कभी शादी का वादा नहीं किया था, मैंने जिससे वादा किया था आज वो मेरी वाइफ है। जाने से पहले अभिमन्यु ने प्रणाली की माँ की तरफ देखा और बोला, मिसेस कपूर, ये एक प्राइवेट और लग्जूरियस हॉस्पिटल है, मुझे नहीं लगता कि आप इसका एक घंटे का बिल भी पे कर पाएंगी।
लेकिन इसकी हालत के चलते इसे डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, क्या आप इसके इलाज के पैसे? मिसेस कपूर अभी भी अभिमन्यु से पैसे ऐंठने के इरादे से वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अभिमन्यु ने उसे बीच में काटते हुए कहा, जाते जाते एक एहसान तो कर ही सकता हूँ, डिस्चार्ज मैं करवा दूंगा। रही बात पैसों की, तो कहा ना कि मेरा अब इससे दया का भी रिश्ता नहीं रहा है। आधे घंटे में आपको पेपर्स मिल जाएंगे, आप इसे कहीं भी लेकर जाएंगी, ये आपकी प्रॉब्लम है। अपनी बात खत्म करके अभिमन्यु वहां से जाने लगा, जबकि प्रणाली पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, रुको रुको अभिमन्यु, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी और अस्पताल में भी रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरे घर मत भेजो प्लीज, प्रणाली रोते हुए बोली। प्रणाली पीछे से गिड़गिड़ाती रह गई थी, लेकिन अभिमन्यु ने एक बार पलट कर तक नहीं देखा था। जैसे जैसे वो अस्पताल से बाहर जा रहा था, प्रणाली की आवाज धीरे धीरे धीमी होती हुई पूरी तरह उसे सुनाई देनी बंद हो गई थी। अभिमन्यु गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया था, उसके चेहरे पर हल्की परेशानी के भाव थे। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी, तुम मुझे हमेशा धोखा देती रही, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया और तुम्हारी मेंटल कंडीशन के चलते तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज करता रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें खुद तुम्हारे परिवार के पास छोड़ूंगा प्रणाली, पर तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है, अभिमन्यु ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। प्रणाली उसे लगभग 7 साल पहले मिली थी, न जाने कैसे उसने खुद ही अभिमन्यु से कॉन्टैक्ट किया था, जब अभिमन्यु उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसे उसने शादी का वादा किया था। वो इशिका थी, लेकिन फिर भी प्रणाली ने अभिमन्यु को पूरी तरह यकीन दिला दिया कि बचपन में अभिमन्यु ने जिससे वादा किया था वो प्रणाली ही थी। उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और उसका परिवार भी आर्थिक रूप से कमजोर था। अभिमन्यु ने प्रणाली का इलाज करवाया। उसका सच सामने आने के बाद भी भले ही वो उससे मिलने ना आता हो, लेकिन इस उम्मीद के साथ उसने प्रणाली की देखभाल करना जारी रखा क्योंकि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। लेकिन अब प्रणाली नक्श के साथ मिलकर जो कर रही थी उससे साफ था कि उसकी मानसिक स्थिति उतनी भी खराब नहीं है। सच जानते हुए भी वो इशिका को चोट पहुंचाने पर उतर आई थी, और जो अभिमन्यु को कभी बर्दाश्त नहीं था। नक्श के बाद अभिमन्यु ने प्रणाली से भी पूरी तरह पीछा छुड़ा लिया था और अब वो सीधा इशिका से मिलने जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में राजवंश विला में अभिमान आशिका के साथ अपने कमरे के अंदर था। वो उसे थोड़ी देर पहले ही लेकर आया था। अभिमान और आशिका ने अभी ठीक से बात तक नहीं की थी कि आकाश ने बाहर से आकर उनके कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह पीटना शुरू कर दिया था। उसके आसपास उसकी फैमिली नहीं थी, सिर्फ निशा मौजूद थी, और ऐसे में उसे किसी तरह की अच्छाई का दिखावा करना नहीं पड़ रहा था। आकाश बेशर्मी से अभिमान को यही कह रहा था कि वो आशिका को हाथ तक ना लगाए क्योंकि वो उसकी है।
आकाश की ऐसी पागलपन भरी बातें सुनकर आशिका ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली थीं। अभिमान सही कह रहा था, वो इतनी आसानी से आकाश जैसे इंसान से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। बहू होने के बावजूद भी उसकी नीयत जरा भी नहीं बदली थी। अभिमान ने गहरी सांस ली और आशिका से कहा, देखा, मैंने कहा था कि ये इंसान इतनी आसानी से अपनी फितरत नहीं बदलेगा। आशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं बाहर खड़ी निशा ने कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? वो आपकी बहू है, आपके बेटे की पत्नी, और आप उसके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, तुम अपना मुंह बंद रखो। कौन से बेटे की पत्नी? उसे तो पता तक नहीं था कि वो उसकी वाइफ है। मैं उससे शादी करने जा रहा था। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरी चीज को नजर उठाकर भी देखे, आकाश ने निशा पर चिल्लाकर कहा और फिर से दरवाजा पीट कर बोला। मैंने कहा, अभी तुम दोनों कमरे से बाहर आओ, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। जो करना है कर लीजिए, मुझे आपसे डर नहीं लगता है, अभिमान ने अंदर से तेज आवाज में कहा। तो फिर मैं भी देखता हूं कि तुम बाहर कैसे नहीं आते हो, आकाश ने चैलेंजिंग आवाज में कहा। फिर उसकी नजर निशा पर पड़ी। जिस तरह से आकाश निशा को देख रहा था, निशा डर के मारे कुछ कदम पीछे हटने लगी थी, लेकिन तभी आकाश ने उसे गर्दन के पीछे से पकड़ा और उसका सर दीवार पर जोर से दे मारा था। निशा दर्द के मारे जोर से चिल्लाई। आकाश की हरकतें देखकर आशिका को अंदाजा हो रहा था कि सिर्फ वही नहीं, अभिमान और निशा ने भी आकाश की वजह से काफी कुछ सहा है। अभिमान कभी भी आकाश के लिए दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन उसने निशा को चोट पहुंचाना शुरू कर दी थी तो अभिमान ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। निशा के माथे से खून आ रहा था। अभिमान निशा को संभालने लगा था, तो वहीं इसकी इस लापरवाही का फायदा उठाकर आकाश ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और ये उसके इरादे बताने के लिए काफी था कि वो क्या करने की सोच रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज आई, अभिमान बाहर से गुस्से में जोर से चिल्लाया, दरवाजा खोलिए मिस्टर राजवंश, वरना अच्छा नहीं होगा। उन दोनों की स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। जहां थोड़ी देर पहले आकाश बाहर से दरवाजा पीटते हुए अभिमान को दरवाजा खोलने का कह रहा था, तो अभी उसकी जगह अभिमान खड़ा था जो आकाश को दरवाजा खोलने के लिए धमका रहा था, लेकिन फिर भी वो दरवाजा खोलने के बजाय आशिका के सामने बिना किसी डर के खड़ा था।